कृष्ण आवाज सुनाई दे रहा है पीछे, कई समय के बाद यहाँ पे आ रहे हैं हम राज बिहारी जी के चरणों में, यहाँ आप सबके चरणों में खड़े के लिए आज भगवद्गीता के 3 श्लोक 17वें अध्याय के उन पे कुछ चर्चा करूँगा। ये जो श्लोक है ये 3 प्रकार की तपस्या के बारे में वर्णन करते हैं। ये कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले निर्जल एकादशी हुई थी, तभी हम सबने कुछ तपस्या की होगी। तो तपस्या क्या होती है, तपस्या किस तरह से भक्ति में अनुकूल होती है, और भगवद्गीता में खास करके तपस्या के बारे में क्या बताया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवद्गीता का 17वां अध्याय जो है भगवद्गीता का 17वां अध्याय जो है वह श्रद्धा त्रय विभाग में कहलाता है, श्रद्धा के 3 प्रकार। और उसकी पार्श्वभूमि यह है, ये शुरुआत होती है भगवान अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि आपने 2 प्रकार के लोगों का वर्णन किया है पिछले अध्याय 16वें अध्याय में। 1 प्रकार के लोग हैं जो शास्त्रों का पालन करते हैं और अपनी वासनाओं का नियंत्रण करते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं और अपने वासनाओं के अनुसार जीते हैं। तो ये जो ऊपर के प्रकार के लोग हैं वो है दैवी प्रकृति के लोग, जो शास्त्रों का पालन करते हैं, अपनी वासनाओं का नियंत्रण करते हैं। और दूसरे हैं जो असुरी प्रवृत्ति के लोग, जो शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं और अपनी वासनाओं के अनुसार जीते हैं। तो अभी अर्जुन पूछते हैं कि इसके बीच में जो लोग हैं उनकी क्या वस्तु है। यह शास्त्र विधिवत्सूच्य वर्तते श्रद्धयामिता तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्वम अजस्तम। तो भगवान पूछते हैं अर्जुन कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्र का पालन नहीं करते हैं पर उनमें श्रद्धा है, तो ये श्रद्धा जो है ये किस प्रकार की श्रद्धा है। और आजकल के समाज में हम बहुत देखेंगे ऐसा कि कोई चीज़ बाबा की पूजा करते हैं, इस पंथ में होते हैं, और कई बार उन ऐसे जो मार्ग होते हैं उनके शास्त्रों में का ज़्यादा प्रचलन नहीं होता, फिर भी लोग काफ़ी श्रद्धा से वहाँ पे जो भी कार्य कर रहे हैं वो करते हैं। तो फिर इसके जवाब में भगवान बोलते हैं कि आपको ये देखना चाहिए कि वो लोगों का रहने का चर्या क्या है, रहने की पद्धति क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, प्रधान रूप से वो कौन से गुणों में है। तो ऐसे नहीं है जो अब्राहमिक धर्म है, अब्राहमिक धर्म मतलब क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म ये धर्म है, उनमें ऐसे बताया जाता है कि आप इस गुरु का पालन करो, इस मार्ग इस शास्त्र को अपनाओ, और ऐसे करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, नहीं करोगे तो आप नर्क में जाओगे। इस तरह का जो द्वंद्व बताया गया है वैसे हमारे शास्त्र में नहीं बताया गया। आज तक बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और जिस प्रकार का गुण है व्यक्ति का उसके अनुसार उसको गति मिलने वाली है। तो जो लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं तो भगवान कहते हैं पर वो कुछ श्रद्धा रखते हैं किसी चीज में, तो फिर वो श्रद्धा का उनके जीवन परिणाम क्या हो रहा है, किस प्रकार की जीवन शैली जी रहे हैं, सत्व रज तम वो किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, यह आपको देखना है। तो वास्तव में अनेक लोग धर्म के नाम ले सकते हैं और धर्म के अनुसार कार्य कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं, पर ऐसे नहीं है कि सब लोग वास्तव में भले ही भगवान का नाम लो, किसी शास्त्र का नाम लो, वास्तव में वो धार्मिक है या नहीं, यह उनके वो किसका नाम, किस नाम से अपना कार्य करते हैं मतलब नहीं है, वो क्या कार्य कर रहे हैं। तो भगवान बताते हैं कि अगर सब जो वो चार चीजें बताते हैं, आप उनका आहार देखो, आप उनका यज्ञ देखो, उनका दान देखो और उनका तप देखो। तो यह चार चीजें अगर आप उनके देखते हैं तो आप समझ पाओगे कौन से गुण में है, और कौन से गुण में समझ में आओगे तो फिर उसके अनुसार आपको उनकी क्या गति होगी ये पता चल जाएगा। भगवान 14वें अध्याय में पहले बता दिया 18वें श्लोक में कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य निष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्वगुण में रहेंगे उनका उद्धार होगा, जो रजोगुण में रहेंगे वो वहीं पर रहेंगे, जो तमोगुण में रहेंगे वो अधोगति जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो इस तरह से भगवद गीता जो बताती है वह वास्तव में सेक्टेरियन नहीं है, वह संकीर्णवादी नहीं है कि सिर्फ आप ये ग्रुप में हो जाओगे तो आपका उद्धार है, ग्रुप के बाहर है तो आपका आप नरक में जाने होंगे, ऐसे नहीं है। आप कहाँ हो यह महत्वपूर्ण है, एक तरह से उससे अधिक महत्वपूर्ण है किस चेतना में, किस प्रकार के गुण में हो। और यहाँ पे भगवान तीन श्लोकों में बताते हैं किस प्रकार की तपस्या होती है। तो तपस्या जो होती है वास्तव में अधिकांश रूप से हम तपस्या मतलब सोचे किसी साधारणतः लोगों का ऐसा विचार होता है कि तपस्या मतलब कहीं जंगल में जाकर रहना और फिर एक योगिक पद्धति में आसन में बैठ जाना और फिर अन्न त्याग करना या जल त्याग करना या इस प्रकार से तपस्या वो संकल्पना हो सकती है। तो भगवद्गीता ये जो है यह न केवल एक परमार्थ ग्रंथ है पर वो परमार्थ ग्रंथ है जो व्यवहार बताता है। व्यवहार मतलब जो हम इस दुनिया में कार्य करते हैं, परमार्थ मतलब जो इस दुनिया के परे जो हम चाह रहे हैं कि भगवत दाम की प्राप्ति करना, भगवत प्रेम की जागृति करना। तो ये जो है भगवद्गीता ऐसा है, अर्जुन जब भगवद्गीता सुनते हैं तो उसके पहले उनके मन में दो पर्याय होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि अगर मैं कार्य करूँगा तो मुझे युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करूंगा तो युद्ध में मैं मेरे रिश्तेदारों का वध करूंगा तो उसे पाप लगेगा और पाप लगेगा तो कर्म बंधन में फंस जाऊंगा। पापमेवाशिदस्मान् हत्वैतानात्तायिनः तस्मान्नार्वयं हन्तु। अर्जुन बताते हैं कि अगर मेरे स्वजनों का वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं ये नहीं करना चाहता। और इसके विपरीत वो सोचते हैं कि अगर वो कार्य नहीं करेगी, युद्ध नहीं करेगी, वो वैराग्य स्वीकार कर लेंगे तो यदि माम प्रतिकार अशस्त्रम शस्त्रपाण धातराष्ट्रारण्य हन्यु तन्मे क्षेम तरम भवेत। वो कहते हैं पहले अध्याय के 45वें श्लोक में कि भले ही मैं कोई शास्त्र न शस्त्र न उठाऊं, कोई युद्ध न करूं और मेरा वध भी हो जाए तो वो भी अच्छा है। तो वो क्या सोचे, दो ही मार्ग सोच रहे कि कार्य करना और बंधन में फंसना या कार्य का त्याग, कर्म का त्याग करना और बंधन से मुक्त। तो भगवान को अर्जुन बताते हैं कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि वास्तव में ये दो ही आपके पास पर्याय नहीं है, तीसरा पर्याय है क्या है कि नॉट रिनंसिएशन ऑफ एक्शन बट रिनंसिएशन इन एक्शन। कि ऐसे नहीं है कि आपको कर्म का त्याग करना है, कि आप जब कर्म कर रहे हैं वह त्याग की भावना से करो, रिनंसिएशन इन एक्शन। कि रिनंसिए आप कार्य कर रहे हो, कार्य करते समय आप वैराग्य त्याग का भाव रखो। मैं कुछ समय पहले अमेरिका में था तो वहाँ पे लॉस एंजल्स में एक यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर दे रहा था, तो वहाँ पे एक विद्यार्थी ने सवाल पूछा कि वास्तव में कि ये जो अनासक्ति है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटैचमेंट एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी, अनासक्ति और गैर जिम्मेदारी इनमें फर्क क्या है। तो मैं बताया कि डिटैचमेंट इज आफ्टर द एक्शन, इररिस्पॉन्सिबिलिटी इज बिफोर द एक्शन। अनासक्ति मतलब क्या है, मैं पूरा खा लिया, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार करता हूं, फिर उसके बाद में उसका क्या फल है उसकी चिंता नहीं करते रहता मैं। कोई विद्यार्थी है वो पढ़ाई करता है ध्यान पूर्वक, इम्तिहान देता है, पर इम्तिहान देने के बाद क्या मैं पास होगा, कितना मार्क्स मिलेगा, कितना ग्रेड आएगा, उसके बारे में चिंता नहीं करता। पर इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति गैर जिम्मेदार होता है, मतलब क्या वो पढ़ाई नहीं करेगा, तो अगर हम भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं तो अनासक्ति मतलब हम हमारी क्षमता के अनुसार पूरा कुकिंग कर लेते हैं, और उसके बाद में कभी वो कुकिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, कभी कोई लोग ऐसा है कुछ बोलेंगे ही नहीं उसके बारे में, कभी कुछ लोग निंदा करेंगे। हमने प्रयास कर लिया है तो अच्छा है, तो वही पर्याप्त है। पर अगर हम बोलेंगे अरे मैं तो अना सकता हूँ, ये हलवा बना रहा हूँ, स्वादिष्ट बने या स्वाद रही बने, मैं अना सकता हूँ, वो अनासक्ति नहीं है, वो गैर जिम्मेदारी है। तो भगवान यहाँ पे जो बताते हैं कि अर्जुन को बताते हैं कि अगर आप अपना युद्ध नहीं करोगे तो वो अनासक्ति नहीं होगी, वो सारी दुनिया कहेगी कि आप डर गए, और डर के कारण भयादराव प्रथम मंस्यन्ते त्वं महारथ येषां च त्वं बहुमतौ भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जो जिन्होंने आपको बहुत महान योद्धा माना है वो अभी बोलेंगे कि आप तो कायर निकले और आपकी निंदा करेंगे, तो आपको युद्ध करना जरूरी है। तो उसी भाव में जो भगवान यहाँ पे तपस्या बता रहे हैं कैसे तपस्या करनी है, तो वह तपस्या के बारे में जब वर्णन करते हैं तो ऐसे नहीं बोलते कि आप जंगल में जाके तपस्या करें। अर्जुन ने वैसे तपस्या भी की है, जब वनवास में थे तब जब उनको अलग अलग देवताओं से अलग अलग शस्त्र चाहिए थे, तो वो हिमालय के ऊपर जाके उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या की, और फिर उन्होंने तपस्या की इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, और उन सबसे उनको अलग अलग प्रकार के शस्त्र बनाए। तो अर्जुन ने उस प्रकार की तपस्या भी की है, ऐसे नहीं है कि अर्जुन में वो तपस्या करने की क्षमता नहीं है, पर अर्जुन यहाँ पे वो तपस्या, अर्जुन को वो तपस्या करने को भगवान नहीं बता रहे हैं। अर्जुन क्या बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि किस प्रकार की तपस्या करने को बोलते हैं, हमारे जो शरीर है, हमारी वाचा है और हमारा मन है, इन तीनों के द्वारा आप तपस्या करो, भगवान बोलते हैं अर्जुन। तो किस प्रकार की तपस्या के बारे में वर्णन करते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्चते। तो पहला जो श्लोक है 17वें अध्याय के 14वां 15वां और 16वां श्लोक है, इसमें वर्णन करते हैं वो। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, पूजना मतलब आदर करना, हम साधारण पूजा मतलब हम एक प्रकार की आरती की थाली से पूजा करना वो वर्णन कर सकते हैं, पर पूजा का अर्थ है आदर करना। वो जो आरती भी करते हैं, किसी उतारते हैं भगवान की उतारते हैं, कोई आदरणीय व्यक्ति आते हैं तो वो भी एक प्रकार से आदर करना है। तो भगवान कहते हैं कि इन चार देव द्विज गुरु प्राज्ञों, इन सबका आदर करना, यह शरीर की तपस्या है। देव मतलब भगवान हो सकते हैं, देवी देवताएं हो सकते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, द्विज मतलब ब्राह्मण जो हमारे गुरुवर होते हैं, और प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब कोई भी जो बुद्धिमान हो। शास्त्र भागवतम में इसका उदाहरण आता है कि जब सुखदेव गोस्वामी वो तो काफी युवा थे, 16 साल के थे लगभग, पर जब वे नैमिषारण्य के, वे जब जंगल में आए शुकताल के वहां पे जहाँ पे परीक्षित महाराज ने अपना व्रत लिया था तप करने का, तभी सारे जो वरिष्ठ महोदय थे वह उन सब ने सुखदेव गोस्वामी आदर किया, क्योंकि वह प्राज्ञ थे। प्राज्ञ मतलब जिनमें बुद्धि, जिनका ज्ञान विकसित है। भागवत में बताया गया वृद्धत्वम वयसाधिना, कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ शरीर के आयु बढ़ने से वृद्ध बनता है व्यक्ति। जो जो वृद्ध शब्द है, वृद्ध का एक अर्थ है कि बुढ़ापा, पर वृद्ध का दूसरा एक अर्थ भी वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही मतलब प्रगति हो रही है, कोई कुछ चीज बढ़ रही है। तो देश की किसी तनख्वाह की वृद्धि हो रही है, देश की वृद्धि हो रही है, मतलब क्या है, बढ़ रहा है। तो वृद्धत्व मतलब हम एक तरह से कहते हैं बुढ़ापा, पर वृद्धि मतलब क्या कि ज्ञान का वर्धन होना। तो प्राज्ञ मतलब जिसका ज्ञान का वर्धन हुआ। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे सब लोगों को आदर करना। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन शौचमार्जवम, शौच शौच मतलब स्वच्छता रखना, आर्जवम आर्जवम मतलब सरलता रखना, और ब्रह्मचर्यम अहिंसा च। अभी देखिए ये सब बता रहे हैं ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये जो दो चीजें यहाँ बताई है, ये 17वां अध्याय है। इसके पहले जो 16वां अध्याय था, 16वें अध्याय में बताया गया था कि किस तरह से व्यक्ति को तीन नरक के द्वार है। किसी को पता है कौन से तीन नरक के द्वार है, यस हाँ वेरी काम क्रोध और लोभ त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत् 16 अध्याय के किसी श्लोक में बताते हैं भगवान की ये तीन नरक के द्वार है। तो अभी यहाँ पे जो भगवान ये तपस्या बता रहे हैं वो बिल्कुल उसके विपरीत है, ये तीनों से बचने के लिए, कि ब्रह्मचर्य मतलब व्यक्ति काम वासना के प्रलोभन में नहीं जा रहा है, अहिंसा मतलब व्यक्ति क्रोध के प्रलोभन में नहीं जा रहा है, और आर्जवम, आर्जवम मतलब सरलता, मतलब वो लोभ के प्रभाव में नहीं जा रहा है। तो ये काफी काफी रोचक है कि भगवद गीता एक तरह से देखी जाए तो वह रणभूमि में हुई है, बताई गई है रणभूमि में, वह इसलिए बताई गई थी जिससे कि अर्जुन को युद्ध करने को बोला जाए, पर उसी भगवद गीता में जहां पे अर्जुन को बताया जा रहा है कि आपको युद्ध करना है, अर्जुन को बता रहे हैं ये भी कि अहिंसा ये शरीर की तपस्या है। तो अगर अहिंसा ये शरीर की तपस्या है तो भगवान अर्जुन को हिंसा करने को क्यों बता रहे हैं? यहाँ पे अर्थ यह है कि हम हमारे जो भौतिक स्तर पे कार्य है या भौतिक स्तर पे प्रवृत्तियां है उनका पूरा दमन नहीं करना है, उनका नियंत्रण करना है। दमन मतलब उनको पूरा बंद करना, नियंत्रण मतलब उनको एक नियोजित पद्धति से कार्य में लगाना। तो हिंसा भी कभी कभी आवश्यक होती है। तो उसी तो यहाँ पे जब धर्म के अनुसार युद्ध हो रहा है तब हिंसा करना आवश्यक है, पर कोई भी छोटी सी छोटे से उत्तेजन पे कोई थोड़ा सा उकसा देता है तो कभी कभी हम रस्ते पे देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, कई जगह पे देखते हैं, लोग छोटे से बहस जाती है और युद्ध करने लगते, हाथापाई पे आ जाते हैं। तो क्या है वह कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हिंसा ये एक प्रलोभन है, वहाँ पे क्रोध जो आ रहा है, क्रोध के वश में आके लोग युद्ध कर रहे हैं, तो वहां पे विचार नहीं हो रहा, अरे ये क्या बात है, इसमें युद्ध करना कुछ मतलब है क्या, इसमें झगड़ा करना कुछ मतलब है। तो ये तो छोटी छोटी बातों में कभी कभी बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। तो पर ऐसे नहीं है कि कभी युद्ध करना ही नहीं, कुछ कुछ समय पर युद्ध करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को अहिंसा बता रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हमेशा ही अहिंसा रखनी है, उसका मतलब है कि जब भी हिंसा की प्रवृत्ति आ जाएगी तभी हिंसा नहीं करनी, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। तो कोई भी जो तत्व होता है वह तत्व को अगर उसी एक तत्व को सर्वश्रेष्ठ बता देते हैं तो समस्या आती है। तो अहिंसा यह महत्वपूर्ण अंग है। प्रभुपाद जी बोलते हैं माँ हिंसा ये सर्वभूतानि, शास्त्र में बताया गया है कि आप किसी भी जीव की हिंसा मत करो, पर यह कब है कि जब वो हिंसा का कोई कारण नहीं है, अगर कारण होगा तो कर सकते। यहाँ पे भगवान बता रहे अर्जुन को कि जो शरीर में जो वासनाएं आती हैं उनसे जो कार्य निकल, उनसे जो हमें कार्य करने की प्रवृत्ति होती है उस पर हमें हमारे कुछ नियंत्रण होना चाहिए। तो बता रहे हैं इस तरह से नियंत्रण करो। तो अभी यह जो पहला श्लोक था इसमें भगवान ने बताया शरीर की तपस्या कैसे करनी है। और अगर हम देखेंगे कि ये तीन चीजें जो है शरीर वाचा वचन और मन, वास्तव में इन सबको नियंत्रण करना एक से एक और मुश्किल है। हम में से अधिकांश लोग कितना भी क्रोध आ जाएगा हाथापाई पे नहीं उतर आएंगे, पर हमारे वचनों से कई बार हम हिंसा कर सकते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि वर्ड्स कैन, जो स्टोन्स कैन ब्रेक बोन्स बट वर्ड्स कैन ब्रेक हार्ट्स, जो पत्थर कोई मारता है तो उससे हड्डियां टूट सकती है, पर वचनों से कोई मारता है तो व्यक्ति का हृदय टूट जाता है। और जो अगर हड्डियां टूट जाती है तो वो जो भाव है उसको समय वो ठीक हो सकती है, पर हृदय टूट जाता है तो उसको ठीक करना काफी मुश्किल होता है। तो इसीलिए अगले श्लोक में ये बताते हैं, पहले शरीर के स्तर पर तपस्या बताते हैं, उसके बाद में अभी वे भगवान मन के स्तर पर तपस्या, सॉरी वचन के स्तर पर तपस्या बता रहे हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। बताते हैं कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसे वाक्य बोलो जिससे कि लोग विचलित न हो। अनुद्वेग कर्म कि जिससे लोगों का जो मन है वो और विचलित न हो। उद्वेग मतलब उत्तेजन या दुख पहुंचाना बेसिकली। खासकर उत्तेजन अनेक प्रकार का होते हैं, पर जो उत्तेजन दुख देते हैं उसको उद्वेग कहते हैं। अनुद्वेग कर्म जो उद्वेग नहीं करते ऐसे उसी में। सत्यम प्रिय हितम च यत, तो दूसरा चीज बताया कि सत्य बोल रहा हूं। तो इसमें क्या है, भगवान जो श्रृंखला बता रहे हैं, पहले वो नहीं बोल रहे सत्य बोल, पहले बोले इस तरह से बोलो कि आप दूसरों का मन विचलित न करो, और दूसरी बोल रहे हैं कि सत्य बोल। इसका मतलब क्या है कि वी शुडंट जस्ट स्पीक द ट्रूथ, वी शुड स्पीक द ट्रूथ इन अ वे दैट ब्रिंग्स पीपल क्लोजर टू द ट्रूथ। कि हमें सिर्फ सत्य बोलना नहीं है, हमें सत्य बोलना है इस तरह से कि लोग सत्य की ओर आकर्षित हो जाए। अगर हम सत्य बोलते हैं और उससे लोग विचलित हो जाते हैं, उससे उससे वो दुखी हो जाते हैं और भगवान से दूर चले जाते हैं, तो फिर ऐसे सत्य बोलने से कुछ फायदा नहीं है। कोई मान लीजिए कोई देवी देवता की पूजा कर रहा है और कोई आता है, हमने बस बोलते हैं कि ये देवी देवता की पूजा है ये सब बकवास है, इस कम बुद्धि वाले लोग करते हैं, अल्प में दशा। वास्तव में बड़ा दुर्भाग्य है, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया से जब आया था सिंगापुर गया था, तो सिंगापुर ये पूरे विश्व में एक ही ऐसा राष्ट्र है यहाँ पे इस्कॉन बैंड है, इस्कॉन में बैन है। और बैन क्यों है, वो सिंगापुर के सरकार के कारण नहीं है, वहीं के सिंगापुर के हिंदू लोगों ने इस्कॉन पे बैन लगा दिया। और क्यों, पहले पहले जब भक्त क्या होता है, जब लोग भक्ति में आते हैं तो पहले बहुत उत्साह होता है, और उत्साह वो विश्वनाथ चक्र ठाकुर सारा दर्शी बताते वो उत्साहमयी। उत्साहमयी मतलब क्या, वास्तव में अंदर से उत्साह हो या ना हो, बाहर से उत्साह दिखाना बहुत होता है। तो क्या होता है, जब हमें नया कुछ पता चल जाता है सिद्धांत, सबको ये गलत है वो गलत है वो गलत है, सबको खंडन करने में बहुत उत्साह लेते हैं। तो वैसे ही पहले पहले वक्त सिंगापुर में गए तो वहां पे देवी देवताओं के मंदिर थे, और उन्हीं मंदिरों में जाकर वो देवी देवताओं के भक्त वहां पे ऑडियंस में थे, और वहां पे देवी देवताओं के भक्ति का खंडन कर। तो वहां पे ऐसे है कि वहां पे जो वहां के सिंगापुर के राष्ट्रीय भाषाओं में से कई भारतीय भाषाएं भी राष्ट्रीय, वहां पे बहुत से भारतीय लोग वहां पहले से रहते थे, तो वो उतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने सिंगापुर सरकार से कंप्लेंट कर दी कि ये हरे कृष्ण लोग जो आ रहे हैं हमारे आपके सिंगापुर में, ये हमारे हिंदू कम्युनिटी में उपद्रव बता रहे, हम नहीं चाहते कि आए, सरकार ने बंद कर दिया। तो अभी जब भी भक्त जाते हैं वहां पे तो इस्कॉन के भक्त के रूप में नहीं आ सकते, तो हमें वहां पे दूसरे एक संस्था का नाम बना दिया है, उस संस्था के अनुसार वहां सारे कार्यक्रम होते हैं। तो क्या है, ये कुछ ये हम देखते नहीं कि चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु भुवनेश्वर मंदिर में आते हैं और सबको बोलते हैं तुम शिव जी के भक्त मूर्खो, नहीं वो भुवनेश्वर के मंदिर में आते हैं और शिव जी को आराधना करते हैं। किस तरह से आराधना करते हैं कि शिव जी कितने महान भक्त है भगवान विष्णु के, पर वो शिव जी की पूजा की खंडन नहीं करते, हर एक चीज के लिए एक समय होता है। तो अगर कोई कृष्ण मंदिर में आया है और हमसे भगवद्गीता का संदेश सुनना चाहता है, तो उचित परिस्थिति में हम बता सकते हैं कि ये देवी देवता की पूजा ऐसी है ये ऐसे देवी देवता की पूजा, हमें शास्त्रों का भी जो बात है ना वो कभी कभी हम एक ही चीज लेते हैं। तो भगवद्गीता में बताया गया है सातवें अध्याय में कि कामैस्तैस्ते ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि जो काम के कारण इनकी इच्छाएं प्रलोभित हो गई है वो देवताओं की पूजा करते हैं। ये पन्न देवता यांति देव नहीं अल्प मेरे समझ सको 7.23 कामैस्ते ऋतज्ञान यो यो याम्यंत अनुभक्ता श्रद्धया बीसवें श्लोक से 23वें श्लोक तक भगवान देवी देवताओं की पूजा है उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो उसमें आखिरी श्लोक बताते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प मेधस है, वो कम बुद्धि वाले हैं। पर अगर हम ये एक चीज लेंगे देवी देवता के उपासक सब कम बुद्धि वाले, ये एक श्लोक शास्त्र में बताया गया है। पर अगर हम 17वें अध्याय में जाते हैं, 17वें अध्याय में 4वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षां सिराजसा प्रेतान भूतगणांश्चान यजन्ते तामसाजना। वे कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो सत्वगुण में, यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षां सिराजसां, और जो यक्षों की राक्षसों की पूजा करते हैं वो रजोगुण में, और प्रेतान भूतगणांश्चान जो प्रेतों की भूतों की पूजा करते हैं वो तमोगुण में। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि देवी देवता की पूजा कोई कर रहा है तो सत्वगुण में, तो अगर कोई सत्वगुण में है तो वही भगवद्गीता एक जगह बता रही है कि देवी देवता की पूजा करने वाला कम बुद्धि वाला, और वही भगवद्गीता दूसरी जगह बता रही है कि देवी देवता की पूजा कर रहा है जो सत्वगुण में। तो क्या है सत्य, क्या सत्वगुण के लोग कम बुद्धि वाले होते हैं? का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या है वास्तव में देवी देवताओं की अगर कोई पूजा कर रहा है उसमें कुछ स्तर का सत्वगुण जरूरी है कि जो हमें कोई जो देवी देव कोई भी देवी देवता दिखते नहीं है, शास्त्रों में बताया गया है उनकी लीलाओं का, उनकी लीलाओं का वर्णन, उनके कार्यों का वर्णन है, उनके महिमा का वर्णन, तो उसमें श्रद्धा रखना जो चीज दिखती नहीं है और जिसका उपासना करने के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, किसी भी प्रकार के नियम हो नियमों का पालन करना पड़ता है, वो सब करने के लिए सत्वगुण जरूरी है। तो कैसे है कि द मोड्स आर नॉट मोनोक्रोम, दे आर मल्टी लेवल। जो प्रकृति के गुण होते हैं वो अगर ऐसे नहीं है कि अगर कभी कभी हम बोलेंगे सत्वगुण का एक रंग है, रजोगुण का एक रंग है, तमोगुण का एक रंग है, ये एक तो सत्य है। पर जो एक रंग होता है, अगर मैं लाल बोलूंगा तो अगर आप किसी पेंटर के पास जाओगे और लाल बोलोगे तो वो लाल में आपको 600 लाल के शेड दिखा देंगे। तो क्या लाल के 600 से वास्तव में 600 नाम भी है अलग अलग कलर का, लोग कैसे याद नाम रहते पता नहीं। पर हर एक तो एक लाल में भी अलग अलग शेड्स है, तो सत्वगुण में भी अलग अलग लेवल होते हैं। तो कुछ लोग अगर सत्वगुण, अगर हम एक स्ट्रिप बोलते हैं ये सत्वगुण है, ये रजोगुण है, तमोगुण है, तो सत्वगुण के जो ऊपर है वह एक स्तर है, सत्वगुण के बीच में है वो एक स्तर है, सत्वगुण के नीचे जो है वो अलग स्तर है। तो सत्वगुण में भी अलग अलग स्तर होते हैं। तो कोई भी देवताओं की पूजा कर रहा है वो एक तरह से सत्वगुण में, पर देवताओं में किस देवता की पूजा कर रहा है, किस भावना से पूजा कर रहा है, उसमें भी स्तर निर्माण होते हैं। तो शास्त्रों में ऐसे बताया गया है, समझाने के दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, शास्त्रों में ऐसे बताया गया है कि जो गाय होती है वह जानवरों में बड़ी पवित्र मानी गई है, तो और इसके विपरीत जो गधा है बड़ा मूर्ख माना गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो गधा है वो मूर्खता का प्रतीक बोलते हैं उसको, और जो गाय है उसको सत्वगुण में बोलते हैं, जो शेर है उसको रजोगुण में बोलते हैं, बंदर जो है वो तमोगुण में बोलते हैं, गधा जो है उसको भी तमोगुण में बोलते हैं। तो पर शास्त्रों में भागवत में से वर्णन आता है, एक श्लोक है जिस बताते स एव गोखरहा, जो ऐसे प्रकार का व्यक्ति है वो एक गधा या एक गाय के समान है। गधा कहाँ गाय कहाँ, दोनों को एक ही स्पीशी में क्यों डालते हैं? गधा है गाय क्यों, क्या है एक तरह से देखेंगे, अगर हम जानवर योनि में देखेंगे तो जानवर योनियों में जो गाय है सत्वगुण में है, जो बंदर है या गधा है तमोगुण में, पर दूसरी श्रेणी से देखेंगे तो सब जानवर जो है वो तमोगुण में नहीं है, जानवर योनि जो है वही तमोगुण में। तो कैसे है कि अ काउ इज इन गुडनेस इग्नोरेंस, वेयर एज अ डोंकी और अ मंकी इज इन इग्नोरेंस इग्नोरेंस, अ टाइगर इज इन पैशन इग्नोरेंस। तो कैसे है जो गाय है वो सत्वगुण सत्वगुण में, जो सत्वगुण के अलग अलग सत्वगुण में कुछ सत्व में होता है, सॉरी गाय जो है सत्वगुण तमोगुण, तमोगुण के सत्वगुण में, तमोगुण के स्तर में कुछ ऊपर के स्तर पे, जो गाय जो जो बंदर है वो तमोगुण में नीचे के स्तर पे। ये क्यों बता रहा हूं मैं, ये देवताओं की पूजा भी ऐसे हो सकती है। हम साधारणतः बोलते हैं कि देवताओं के उपासक है जो शक्ति की देवी की पूजा करते हैं वो तमोगुण में है, या जो ब्रह्मा की पूजा करते हैं वो सात रजोगुण में है, जो विष्णु की पूजा करते हैं सब गुण में है। यह स्तर सही है, पर इसमें कैसे है, जो विष्णु की पूजा करते हैं दे आर इन गुडनेस गुडनेस, दोज हू वर्शिप द गॉडेस दे आर इन गुडनेस इग्नोरेंस। तो मतलब सत्वगुण का गुडनेस सॉरी इग्नोरेंस गुडनेस यू कुड से। तो जो है यहाँ पे कि जो देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उसमें भी श्रद्धा है, वो शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, उनका भी आदर करना चाहिए। अनुद्वेग कर्म वाक्य मतलब क्या, कि लोगों से ऐसा बर्ताव नहीं करे जिससे कि उनका मन बिना किसी फल के उत्तेजित हो जाए। तो मान लीजिए कोई गणेश की पूजा करता है, हम जाते हैं बोलते गणेश की पूजा कम बुद्धि की, आपको शास्त्र सिर्फ भगवान की पूजा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ये लोग ये बताते हैं, ये लोग बताते हैं, ये धर्म का मामला बड़ा ही मुश्किल है, छोड़ दो ये सब, और नास्तिक बन जाता है। तो हमने क्या किया उनके लिए, हमने उनकी कोई सहयोग नहीं किया, उनकी कोई सेवा नहीं की, उनके उनके उन पे हिंसा की है वास्तव में। तो वचन इस तरह से बोलने चाहिए, सत्य इस तरह से बोलना चाहिए, अनुद्वेग करम वाक्य सत्यम प्रिय हितम जयत। हितम लोगों का हित होना चाहिए, और लोगों को हित होने के लिए जो हमारे वचन हैं प्रिय होने चाहिए। तो अभी यह संभव नहीं है कि हमेशा हम जो बोलेंगे वो सबके लिए प्रिय ही होगा, कभी कभी अप्रिय वचन बोलने ही पड़ते हैं। खास करके कोई भी अगर किसी अथॉरिटी पोजिशन में आता है तो लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए उनको बताना पड़ता है कि जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो अप्रिय वचन बोलने पड़ते हैं। पर कैस्टिगेशन इन अ मूड ऑफ अफेक्शन ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। कैस्टिगेशन मतलब डांटना, तो वो अगर नॉट इन अ मूड, इन अ रिलेशनशिप ऑफ अफेक्शन, भाव ही नहीं, अगर स्नेह का संबंध है किसी का। प्रचार जब हम करते हैं तो प्रचार करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज ये नहीं है कि हम किस तरह से बोलते हैं, हम किस तरह का तर्क वितर्क करते हैं, हमारे शास्त्रों का ज्ञान कितना है, यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। पर प्रचार करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि किसी न किसी तरह से लोगों को लोगों में श्रद्धा जागृत करना कि हम उनके हित चिंतक हैं। वो अगर जागरूक हो जाएंगे लोग जो भी सुन रहे कि हम उनका हित चाहते, हम उनके लिए कुछ करने आए, हम उनका कल्याण चाहते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति उससे व्यक्ति पाया जाता है वो कुछ शोषण करना चाहता है उससे अधिकांश रूप से। तो अगर ये श्रद्धा हो जाएगी कि ये व्यक्ति जो मुझे बोल रहा है ये मेरे ये व्यक्ति मेरा हित चिंतक है। जैसे अगर अगर यहाँ पे आप आ जाते हैं, यहाँ पे जब अंदर आते हैं तो यहाँ पे कोई एक सुन लेके खड़ा आपको छुपाने लगता है, क्या चल रहा है आप बोलेंगे, आप उसको रोकने का प्रयास करेंगे, उसको टोकने का प्रयास करेंगे उसको। पर अगर आपको पता चलता है कि यहाँ पे बॉम्बे में कोई बड़ा इबोला ऐसा कोई इन्फेक्शन आ गया और उससे संरक्षण करने के लिए एक शिविर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक डॉक्टर आया है तो सबको उसका एक वैक्सीन दे रहा है, तो फिर जब हमको ये पता है, ये ज्ञान है, और फिर हमको पता है कि जो एक प्रशिक्षित जो उचित व्यक्ति आया है और वो सुई चुभाता है तो हम स्वीकार कर लेते हैं। तो सुई चुभाने का कार्य एक ही है पर उसमें फर्क क्या है, उसमें हमारा हमारा क्या ज्ञान है, क्योंकि सुई क्यों चुभ रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे और कौन चुभा रहा है, उसमें श्रद्धा है क्या। हमको अगर लगता है कि ये व्यक्ति सही में डॉक्टर, हम जान श्रद्धा है कि ये डॉक्टर है या डॉक्टर या दवाई में ट्रेंड है, तो फिर वो सुई चुभाएगा तो हम वो सही कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। पर कोई एक दूसरे को आके सुई चुभाने लगेगा तो हम वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब हमें किसी को कुछ अप्रिय वचन बोलने होते हैं तो वो अप्रिय वचन बोलने क्या है कि देयर इज नथिंग दैट वी गिव एज फ्रीली एज एडवाइस। इस दुनिया में दान देने के लिए लोग बहुत आतुर होते हैं। कैसा दान? उपदेश का, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो बड़े ही उदार चित्त से लोग दान दे देते हैं, बाकी प्रकार का दान बड़ा ही बहुत कम देते हैं, पर जो एडवाइस है वो आराम से लोग देते हैं। तो क्या होता है कि कोई कोई अगर कोई बोलता है ऐसे करो वैसे मत करो, तो अगर उस व्यक्ति में हम श्रद्धा नहीं है तो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे फुकट में एडवाइस देते रहते हैं
मुफ्त में,
तो क्या है ये लोग सीरियसली लेंगे, और ऊपर से अगर वो जो उपदेश दे रहे हैं वह वास्तव में थोड़ा टोकने वाला होगा तो लोग ध्यान देंगे ही नहीं, उल्टा शत्रु बन जाएगा। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं भी सत्य बोलना है, पर इस तरह से बोलना है कि अनुद्वेग प्रिय हितम, तो वो इस तरह से हमें बोलना है कि जिससे कि अगर हम किसी को कुछ डांटना है, किसी को कुछ किसी को गलती की उसको सही बोलना है, तो एक स्नेह का संबंध जो होना चाहिए, और स्नेह के संबंध में जब हम इस तरह से बोलते हैं तो फिर वो उतना चुभता नहीं है, वो चुभने वाला तो है ही, चाहे वो कोई अपात्र व्यक्ति सुई चुभे या डॉक्टर सुई चुभे, दोनों में दर्द तो होने ही वाला है, वो चुभने तो वाला ही है, पर जो अगर हमारी समझ अच्छी है, अगर हमें पता है क्या हो रहा है तो हम सहन कर लेंगे। ठीक उसी तरह से कितना भी सत्य कोई उन्हें बोल रहा हो और कितना भी जरूरी क्यों ना हो किसी को डांटना, किसी को सही समझा, किसी को कुछ गलती सुधारना, पर उसको उससे हाई उस वैसे करते समय हमेशा दर्द होने वाला है, पर जो अगर उसमें हमने संबंध स्नेह का जोड़ लिया है तो उसमें उतना दर्द नहीं है। तो इसीलिए भगवान वो बोलते हैं सत्य बोलने के साथ साथ इस तरह से बोलो कि वो उसको व्यक्ति उत्तेजित न हो, प्रिय होना चाहिए। और आकृति बोलते स्वाध्याय आभ्यसन, स्वाध्याय आभ्यसनम मतलब बताते हैं कि आप शास्त्रों का पठन करो। तो हम महाभगविता का श्लोक बोलते हैं, ब्रह्मसंहिता का श्लोक बोलते हैं, हमारे ऋषि मंत्र जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, यह सब क्या है, यह हमारी ध्वनि से हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर जब हम भगवान के बारे में बोलते हैं, शास्त्रों के बारे में बोलते हैं, तो उससे क्या कर रहे हैं, हमारे ध्वनि को, हमारी वाणी जो है उसको हम एक तरह से नियंत्रित कर रहे हैं, उसको दमन नहीं कर रहे और उसको नियंत्रित कर रहे हैं। तो शास्त्रों के अनुसार बोलना ये भी एक प्रकार की तपस्या है, ये तपस्या है, इस तपस्या से भी हमारा शुद्धिकरण होता है। जितना हम जो भी हम शास्त्रों का श्लोक याद करते हैं, कई बार हम श्लोक याद करते हैं इसलिए कि मैं जब प्रवचन दूंगा तो उसमें बताऊंगा ये श्लोक लोगों को पता चलेगा, ये श्लोक भी पता है, ये श्लोक भी पता है, वो श्लोक भी पता है, ये एक उद्देश्य हो सकता है हम श्लोक याद करने का, पर श्लोक हम याद इसलिए भी कर सकते हैं कि हम खुद उसको 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 दोहरा कर उसको चिंतन कर सकते हैं, कोई और नहीं भी होगा, हम सिर्फ कहीं चल रहे हैं कोई जा रहे हैं तो वहाँ पर श्लोक दोहरा सकते हैं, उसको चिंतन कर सकते हैं, और हम भगवान और शास्त्र पर चिंतन कर सकते हैं इस तरह से। तो यह भी एक वाणी की तपस्या है जो शास्त्रों को दोहराना, और इससे भी भगवान कहते हैं कि हमारी हम प्रगति करेंगे, हमें शुद्धिकरण होगा। और तीसरा जो है 16 श्लोक में बताते हैं कि कैसे मन की तपस्या क्या है। तो अभी मन की तपस्या में थोड़ा आश्चर्य की बात है, बताते हैं मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस उच्यते। बताते हैं मन प्रसाद मतलब संतुष्टि, मन प्रसन्न रखना। सेटिस्फैक्शन इज नॉट जस्ट एन इमोशन, सेटिस्फैक्शन इज अ डिसीजन। संतुष्टि ये केवल एक भावना नहीं है, कभी बोलते हैं कि मैं आज संतुष्ट हूं, मैं आज बड़ा असंतुष्ट हूं, आई एम वेरी डिससेटिस्फाइड। तो संतुष्टि ये एक भावना है, पर ये केवल एक भावना ही नहीं है, यह एक फैसला भी है। तो हम जिस प्रकार का फैसला करते हैं उसके अनुसार हम संतुष्ट हो सकते हैं या असंतुष्ट हो सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि अगर हम एक समूह में रहते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, तो हम देखते हैं अरे ये तो इतना अच्छा गाता है, मुझे तो गाना आता ही नहीं है, ये इतना अच्छा बोलता है, ये इतने अच्छे से लोग डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या होता है, हम हमेशा ऐसे तुलना करते रहते हैं, और कई बार तुलना करके अगर हमें लगता है कि मुझ में गुण नहीं है तो हम उदास होते हैं और उसके कारण असंतुष्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे है, इस प्रकार के संतुष्टि कोई जरूरत नहीं है, और हम बोले नहीं मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, क्यों मैं असंतुष्ट नहीं हूँ, कैसे हैं, हम सबके पास कुछ गुण है। तो कैसे मान लीजिए कि अभी शाम को प्रसाद होने वाला है, तो अभी ऐसा विचार कीजिए ये शाम को प्रसाद, ये फीस्ट है, पर ये ऐसा फीस्ट है कि सबको अलग अलग चीजें मिलने वाली है, हर एक के प्लेट में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजन है। पर मान लीजिए मेरे प्लेट में स्वादिष्ट व्यंजन है, पर मैं मेरे प्लेट में जो खाने के जगह, अरे उसको वो मिला है, अरे उसको वो मिला है, अरे उसको वो मिला है, अरे तुमको जो मिला है खाओ ना। तो क्या होता है, हमारे प्लेट में भी स्वादिष्ट व्यंजन है पर वो हम देखते नहीं है, और दूसरों के प्लेट में क्या देखते हैं उसके कारण असंतुष्ट हो जाता है। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसी पद्धति होती है कि हमारे पास भी कुछ अच्छी कुछ क्षमताएं है, कुछ प्रतिभाएं है, कुछ चीजें हमारे पास भी है, कुछ चीज दूसरों के पास है, तो हम जो दूसरों के पास है वो देखते हैं और उसे असंतुष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर ये फैसला कर लेते हैं कि सेटिस्फैक्शन इज अ डिसीजन, मतलब जो मेरे पास है मैं उस पर ही जोर, दूसरे के पास है उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करने वाला। कि अगर मैं सोचता हूं कि आज शाम को जो प्रसाद होने वाला है उसमें गुलाब जामुन होने वाला है, मैं सोचता हूँ, या मुझे अफवाह सुनी है मैंने कि आज गुलाब जामुन होने वाला है, फीसटे गुलाब जामुन है, और जब मैं जाता हूँ वहां पर गुलाब जामुन नहीं होंगे तो मैं असंतुष्ट हो जाऊंगा। पर अगर मैं उसी समय ये सोचूंगा कि अरे यहाँ पे बाहर ही रस्ते पे इतने सारे भिखारी है, कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, तो मुझे अच्छा खाना तो मिल रहा है। तो क्या है यहाँ पे कि अगर जो जिनके पास नहीं है, जो जिनके पास वो है मैं उनको देखूंगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा, पर अगर मैं देखूंगा कितने सारे लोगों के पास वो चीजें नहीं है जो मेरे पास है तो उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो इसीलिए संतुष्टि भगवान ये केवल एक भावना नहीं बता रहे, ये एक अनुशासन बता रहे, ये एक तपस्या बता रहे। संतुष्ट रहना यह एक तपस्या है, और उस तपस्या के लिए क्या करना है, जो चीज प्रभुपाद जी से तात्पर्य बोलते हैं कि द मोर वी कंटेम्पलेट इन द सेंस ऑब्जेक्ट्स द मोर वी बिकम एजिटेटेड। वो बताते हैं कि जितना हम इंद्रियों के विषयों के बारे में विचार करते हैं, हम सोचेंगे कह रहे हैं मुझे मिल जाएगा तो मैं इसका भोग करूंगा, ये मिल जाएगा तो भोग करूंगा, पर वास्तव में भोग वो मिलेगा या नहीं, उससे आनंद मिलेगा कि नहीं, वो मिलेगा तो भी इतना छोटा आनंद होने वाला है वो। अगर हम उसके बारे में विचार ही नहीं करेंगे तो जो असंतुष्टि आते हैं वो संतुष्टि नहीं है उनकी। तो इसलिए वो बता रहे हैं यहाँ पे कि मना प्रसाद संतुष्टि ये एक फैसला है, ये एक फैसला है। सोक्रेटिस नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर थे, वो कहते थे If you are fortunate, you get a good wife. If you are not fortunate, then you become a philosopher. तो क्या है? हाँ, बता दे कि अगर कोई व्यक्ति भाग्यवान है तो उसको अच्छी पत्नी मिलती है, पर वो भाग्यवान नहीं है तो फिर तत्व ज्ञानी बन जाता है। तो मतलब ये कि जिस भी परिस्थिति में व्यक्ति है उसको संतुष्ट रहना सकता, तो मना प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। सौम्य मतलब जो जो व्हाट इज जेंटलनेस, जेंटलनेस इन हिंदी सौम्य ही है ना, तो सौम्य मतलब मधुर, जो ज्यादा उद्विग्न नहीं होता इस तरह से, इस प्रकार का। और मौनम, अब यहाँ पे एक आश्चर्य की बात है कि साधारणतः मौन जो है वह वाणी के बारे में बोलते हैं, शांत बैठो, हम किसी को बोलेंगे तो शांत रहो। तो मौन जो है, अगर कोई बोलता है मैंने मौन रख लिया है, मतलब वो बोलेगा नहीं, पर यहाँ पे भगवान बोल रहे मौनत्वम, यह तपस्या किसकी है, मन की है। तो अभी मौन ये मन की तपस्या कैसे हो सकती है, मौन ये तो वाणी की तपस्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे भाव क्या है आपको समझना है, ये क्या है, कई बार हमारा जीवा शांत रह सकती है पर हमारा मन चीख रहा होता है, मन चीख रहा होता है। मेनी टाइम्स पीपल टॉक बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट द साउंड ऑफ साइलेंस। कई बार लोग बोलते हैं क्योंकि शांति की जो ध्वनि होती है, शांति की जो गूंज होती है, वो सहन नहीं कर सकते। क्योंकि जब शांत होता है तो क्या होता है, हम बाहर से शांत है पर अंदर से मन चीख रहा है, ये करो ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, ये वो ऐसा है वो वैसा है। तो फिर क्या, वो सब मन के जो चीख चिखना है चिल्ला है, तो उससे बचने के लिए लोग बोलने लगते हैं। और अगर कुछ बोलने को नहीं है तो कुछ डिवाइस चालू कर देते, वो बोलते रहता है। टीवी चालू कर देते हैं, मोबाइल पे कुछ मूवीज देखते हैं, कुछ रेडियो सुनते रहते हैं। ऑफकोर्स भक्त जो है वो जो मन की जो ध्वनि है उसको शांत करना, उसको शांत करना है। तो मौन जो है, बाह्य रूप से हम बोले या ना बोले, हमें मन को शांत करना पड़ता है। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषाम। छठे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मन को शांत करना, प्रशांत मनसम येनम। जब ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, योगिनम सुखम उत्तमम, योगी उत्तम सुख का अनुभव करेगा। उपैति शांत रजसम, तभी जो रजोगुण है शांत हो जाएगा। ब्रह्म भूतम अकल्मशम, व्यक्ति सारे कल्मश से मुक्त होकर कैसे मैं स्वयं ब्रह्म हूं, मैं आध्यात्मिक तत्व में आत्मा हूं, समझ जाएगा। तो मौनम मतलब मन को शांत करना। और जब हम कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं, तो बाह्य रूप से वो मौन तो नहीं लगता है, वो मौन खास कर जोर से अगर कीर्तन कर रहे हैं तो वो तो कोलाहल लगता है कभी कभी, तो मौन नहीं लगता है। और वास्तव में उससे वो इस प्रकार से भले ही कोलाहल लगे, वो उससे मन शांत हो रहा, मन संतुष्ट, मन और जो है शुद्ध हो रहा है, शुद्ध होने के लिए शांत हो रहा है। मौनम भगवान यहाँ पे तपस्या बोल रहे हैं, वो मन की तपस्या, मतलब जो मन की आवाज है, मन का जो बड़बड़ चालू होता है, ये ऐसा ही है। क्या होता है कि जो भी होता है ना, जो भी होता है साधारणतः उसके बारे में हमारा मन कमेंट करते रहता है। कोई व्यक्ति आ गया, ये तो आलसी है, ये व्यक्ति चिड़चिड़ा है, ये व्यक्ति ऐसा ही है, ये वैसा ही है। तो हम भले ही वैसे बोले नहीं, हर चीज के बारे में मन कमेंट कमेंट करते रहता है। और यह जो है, यह कई बार बहुत डैमेजिंग होता है, बहुत हानिकारक होता है। मन का जो इन हमारे मन में हमेशा एक इनर डायलॉग चल रहा, और वो इनर डायलॉग जो है वो अगर हमेशा नकारात्मक रहेगा, खुद के बारे में नकारात्मक होता है, दूसरों के बारे में नकारात्मक होता है। कोई व्यक्ति आता है हमारे पास, हंसता है, उसको तो जरूर से कुछ काम होगा इसलिए इतना अच्छा बात कर रहा है। तो हो सकता है, नहीं हो सकता, पर हमें शुरुआत से ही नकारात्मक क्यों रहना है। अगर कुछ गलत हो जाता है हमारे साथ, मेरी किस्मत ही खोटी है। किस्मत फूटी है नहीं, तुम्हें क्यों फोड़ रहे हो किस्मत को तुम। हम हमारे नकारात्मक भाव से क्या करेंगे, वही करेंगे। तो इसलिए जो है मन का जो हमेशा डायलॉग चालू होता है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, तो उसको शांत करना। और वह जब हम भगवान कृष्ण पे निर्णय केंद्रित करते मन को, तभी वो मन मौन हो जाता है। मौनम, इस मौनम के साथ भगवान बोलते हैं आत्मविनिग्रह, जो खुद पे नियंत्रण करना। तो अभी ये तो पहले ही बोल चुके 14वें श्लोक पहले की, कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अहिंसा करना है, सरल आर्जवम रखना है। तो यहाँ पे आत्मविनिग्रह का मतलब क्या है, पहले बताया गया कि शारीरिक स्तर पे उन चीजों में लगना नहीं है। तो शारीरिक स्तर पे कम से कम हिंसा मत करो, शारीरिक स्तर पे कम से कम जो इंद्र तृप्ति में मत लगो। पर यहाँ पे आत्मविनिग्रह बता रहे हैं, यहाँ पे मन के स्तर पे भी जो विचारों को ज्यादा दूर जाने मत। और इसलिए अगले पाठ में भाव संशुद्धि, भाव संशुद्धि, भाव संशुद्धि मतलब हमारे पूरे अस्तित्व का शुद्ध करना। तो व्हेन वी सी द इम्प्योर एज इम्प्योर, वी बिकम प्योर। कि जो अशुद्ध है, जब हम उसको समझते ही अशुद्ध है, तब हम शुद्ध हो जाते हैं। अभी क्या होता है, अभी जब हमारा मन मन रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है, जो अशुद्ध होता है वो बड़ा वो अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है, वो अशुद्ध नहीं लगता है। पर जब हम स्वीकार कर लेंगे वास्तव में अशुद्ध है, तो फिर क्या होगा, जब हमें अशुद्ध है तो हम खुद ही उससे दूर रहेंगे। सो व्हेन द माइंड एक्सेप्ट द इम्प्योर टू बी इम्प्योर, बुद्धि के स्तर पे नहीं, बुद्धि के स्तर पे अगर होगा तो अच्छी बात है, कम से कम हम बुद्धि के स्तर पे समझना चाहिए, भले ही मुझे अच्छा लगता है पर ये उचित नहीं है, ये प्रशासन बताया गया, इसके प्रशासन ने इसके खिलाफ बताया गया है, तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो बुद्धि के स्तर पर तो जरूर हमें समझना है, पर जब मन ये स्वीकार कर लेता है तो तभी क्या होता है, तभी हमारा भी हम वास्तव में शुद्ध हो जाते हैं। सो व्हेन द माइंड एक्सेप्ट्स द इम्प्योर टू बी इम्प्योर, तभी क्या होता है, तभी इतना प्रलोभन नहीं आता और तभी हम वी बिकम प्योर। तो इस तरह से भाव समशुद्धि पे तमो मान समुच्चते, तो यहाँ पे तपस्या जो भगवान बता रहे हैं, अगर हम इसका विचार करेंगे तो इसमें वो एकादशी को उपवास करो ये तपस्या नहीं बता रहे, वो भी एक प्रकार की तपस्या है जरूर, पर वो तपस्या जो है वह 15 दिन में एक बार आती है या निर्जल एकादशी होगी तो साल में एक बार आती है, और तभी हम तपस्या करेंगे तो अच्छी बात है, पर ये जो भगवान बता रहे हैं ये पूरे जीवन में नियंत्रण करना है, और इससे हमारा वो एक दिन साल में उपवास करने से जरूर शुद्धिकरण होगा पर उससे उतना परिवर्तन नहीं होगा हमारे जीवन में जितना हम कोई जो सद्गुण है उसको विकसित करने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं अगर हम करते हैं। कोई अगर मान ले क्रोधित होकर चिल्ला कर कुछ बोलता नहीं किसी को, तो कोई अगर निर्जल उपवास करेगा तो ये तो बड़ा तपस्वी है हम बोलेंगे, तो कोई चिल्ला के कोई बोलता नहीं है तो हम उसको तपस्वी नहीं बोलते साधारण, पर सबके जीवन में ऐसे प्रसंग आते ही है जब उनको क्रोध आ जाएगा, सबके जीवन में ऐसे कोई कुछ ऐसे गलत उल्टा सीधा बोल देता है उल्टा सीधा हो जाता है, तो जो व्यक्ति शांत रहता है क्रोधित नहीं होता है वह भी तपस्वी है। तो भगवान इस तरह से जो तपस्या की परिभाषा बता रहे हैं वह तपस्या की परिभाषा ऐसी नहीं है कि हमें सारा जीवन त्याग करके कुछ चमत्कारिक कर दिखाना है, नहीं, हमारे साधारण के जीवन में ही हम धीरे धीरे अगर इसका अनुशीलन करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारा परिवर्तन हो जाएगा। तपो दिव्यम पुत्रता ये शुद्धम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सुखम तनंतम ब्रह्म सौख्यम तनंतम। ऋषभदेव महाराज 5वें अध्याय में अपने पुत्र को जब दे देते तो कहते हैं कि तपस्या का फल क्या होता है, ब्रह्म सुखम अनंतम, जो ब्रह्म सुख है अनंत सुख है उसका वो हमें प्राप्त होता है। ये तदग्रे विषम परिणाम अमृतोपम भगवान के 4वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि पहले यह विष जैसे लगेगा, तपस्या करना विष लगता है और तपस्या शुद्धिकरण हो जाता है तभी तभी बहुत सा आनंद है, असीमित मात्रा में वास्तव में आनंद है, और वह आनंद प्राप्ति करने के लिए हमें ऐसे इसको शुद्ध कर, मान लीजिए आपको बताता है कि अभी ये जो ग्लास है इसमें स्वीट राइस है, पर इस स्वीट राइस के ऊपर एक कड़वी दवाई का लेयर है, पर आपको कड़वी दवाई को बाहर डाल के सिर्फ स्वीट राइस नहीं ले सकते, आपको कड़वी दवाई पीने बाद में स्वीट राइस मिले, तो अग्रे विषम पहले जहर है परिणाम अमृत, तो तपस्या ऐसे हमको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर भी सकता, पर वास्तव में है जो तपस्या है वो हमेशा तपस्या नहीं रहती है, शुरुआत में तपस्या लगती है तो जितना हम प्रगति करते रहते जितना हम शुद्ध हो जाते रहते उसके बाद तपस्या वो तपस्या नहीं रहती है, तपस्या में वास्तव में आनंद मिलता है, और तपस्या क्या है, जो हम संतुष्ट रहना, जो मधुर बोलना, क्रोध न करना, यह सब पहले पहले तपस्या लग गया, पर ऐसे हम करेंगे तो हम भी प्रसन्न रहेंगे, हम भी संतुष्ट रहेंगे, दूसरों के साथ भी हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, और हमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें कार्य भक्ति में जीवन में करनी है उसको हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो सारांश में मैं चर्चा की किस तरह से कि ये 17वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई शास्त्रों का पालन नहीं करता है श्रद्धा है तो व्यक्ति को कैसे समझना चाहिए, उनके कार्यों से समझना चाहिए, उनके गुण कौन से है, और उस गुणों के संबंध में भगवान यज्ञ दान तप और अन्न इन तीन चारों के बारे में वर्णन करते हैं, तो उसमें से हमने तप के बारे में चर्चा की, और हमने देखा कि भगवद्गीता में ऐसे कर्म का त्याग करने को नहीं बोला है, कर्म में त्याग मतलब कर्म को त्याग की भावना से करने को बोला है, और उस संबंध में यहाँ पे जो भगवान बताते हैं तपस्या करना है वो जंगल में जाके बहुत उपवास करना वगैरह नहीं बता रहे, वो शरीर के स्तर पे, जीवा के स्तर पे और मन के स्तर पे हमें हमारे जीवन में थोड़े थोड़े परिवर्तन करने हैं, और शरीर के स्तर पे हमने देखा कैसे कि जो काम क्रोध लोभ जो हम सबको ढकेलता है किसी दिशा में उसका प्रतिकार करना, यह मतलब यह सत्य बोलना या सरल रहना या क्रोध न करना या ब्रह्मचर्य रखना उसका हम निर्धन करते हैं। उसी तरह से वचन में भगवान ने बताया क्या, अनुद्वेग करना, इस तरह से बोलो जिससे कि हम विचलित न, लोगों को विचलित न करें। तो हमें इस तरह से बोलना है कि सत्य नहीं बोलना है, सत्य इस तरह से बोलना है कि सत्य क्यों लोगों को आकर्षित करना है और मन के तपस्या में देखा संतुष्ट जो है यह एक तपस्या है। उसका मतलब यह है कि मैं असंतुष्ट हूँ या संतुष्ट हूँ, सिर्फ भावना के स्तर पर यह रहना है। हमें देखना है क्या चीज़ें मुझे असंतुष्ट करती हैं, उन चीज़ों से दूर रहना है। संतुष्टि एक फैसला है। अगर हम ये फैसला करते हैं तो हम जिस भी परिस्थिति में रहेंगे हम संतुष्ट रहेंगे और हमारे हमको जो भी भगवान ने दिया है उस चीज़ों का उपयोग करके उनकी सेवा में हम प्रगति करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को सवाल है? तो जब हम कुछ गलती करते हैं हमें कोई डांटता है तो हमें भी क्रोध आ जाता है तभी। तो क्रोध क्यों आता है? साधारणतः जब भी कुछ गलत होता है तो वो गलती के बारे में हमारी उंगलियां तीन दिशा में जाती है, एक है ऊपर, एक है बाहर, तीसरी अंदर। मतलब अरे मेरी किस्मत ही फूटी है, मेरी नियति ऐसी है, जो भी करता हूँ वो सब खराब हो जाता है एक तरह से। दूसरा है कि हम दूसरों को दोष देते हैं, तुमने भी ठीक से बताया नहीं, इसके कारण ऐसे हुआ, तुम बताते तो सब कुछ हो जाता। और तीसरा है हम खुद को दोष देते हैं, यह भी अच्छा नहीं है। खुद को दोष देते मतलब क्या बोलते हैं, कह रहे मैं निकम्मा ही हूँ, मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो उससे हम हताश हो जाते हैं। तो तीनों जो है ये वास्तव में मन के खेल है। The three misdirections of the mind in the blame game. कि जो ब्लेम गेम है दूसरों को दोष देना, उसमें तीन प्रकार से हमारा जो मन है इधर उधर या उधर ऐसे करता है। तो मान लीजिए कोई चोर कहीं दौड़ रहा है और चोर का दूसरा कोई सहयोगी है, पुलिस आके पूछते हैं चोर कहाँ गया, वो वास्तव में चोर इधर ही है, नहीं उधर गया उधर गया उधर गया, और पुलिस को तीनों ओर भगा देते हैं और चोर यहाँ पे उसको पता ही नहीं चलता है। तो वैसे ही क्या करता है हमारा मन जो है, जो असली समस्या है वह हम देखते ही नहीं है, और अरे ये ऐसा है वो ऐसा है मैं वैसा हूँ मेरी दुनिया ऐसी है। हम ऐसा बोल के क्या करते हैं, ध्यान ही नहीं देते, जो समस्या है उसका हल नहीं देखते। तो जब गलती हो जाती है तो क्रोध इसलिए आता है कि एक तो हो सकता है कि हम खुद पे क्रोध हो जाता है कि मैं इतना निकम्मा कैसे हो गया, मैंने ऐसे गलती कैसे की, या फिर दूसरा लगता है कि वो व्यक्ति पे क्रोध आता है क्योंकि वो व्यक्ति हमारा दोष ढूंढ रहे, भले ही हमारा दोष क्यों हो या ना हो, मतलब क्या होता दोष हो भी तो भी खास करके जो व्यक्ति अगर जैसे आप बताया था कि हमसे थोड़ा ही सीनियर ही है, थोड़े से ही सीनियर है, तो क्या होता है उसमें हमें वो जब कुछ गलती बताते हैं तो हमें मामा हमें अच्छा ही लगता है। वो क्या है, अरे ये व्यक्ति मेरे से ये क्यों मुझे वही गलती बता रहा है, वही वरिष्ठ भक्त बता रहे तो वो बात अलग लगती है। पर ये दूसरे ऐसा उस समय क्या होता है, इसको अहंकार बोलना ये उचित नहीं है, इसे अहंकार हो सकता है पर यह साधारण स्वाभाविक मानव भावना है। तो साधारणतः अगर किसी ने गलती की भी है तो फिर वो गलती वो पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए, पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए, बड़े ही संवेदनशीलता से हमें बोलनी चाहिए। हम जब प्रभुपाद जी के बारे में सुनते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि प्रभुपाद जी ने कितना फूल्स रास्कल्स ऐसे बोला करते थे, ये मूर्ख है ये पागल है ये ऐसे ऐसे, पर प्रभुपाद जी भी बड़े संवेदनशील थे। एक बार एक भक्त उनके वो जब भारत में पहली बार आए थे तो क्या हुआ था, एक उनके साथ एक नए शिष्य आए थे, और वो शिष्य पहले तो उन्होंने सब बाल और चेहरा शेव कर लिया था, पर बाद में वो उन्होंने सब कुछ बढ़ाने लग गए, तो लंबे बाल आ गए, दाढ़ी आ गई, मूछ आ गए। और जब प्रभुपाद जी का कार्यक्रम में आ रहे तो वो बिल्कुल हिप्पी से लगते थे। अभी कुछ साधु पुरुष भी होते जो लंबी दाढ़ी कर लेते हैं, पर ये उनका उनका जो रहन सहन होता है वो एक प्रकार से साधु जैसे होता है, पर ये तो ये जो लोग थे वो पहले से हिप्पी बैकग्राउंड से आए थे, तो अभी तक तो थोड़ा सा हिप्पी जैसे बोलना था, चलना था, रहन था, और उसे रूप भी वैसे ही हो गया। तो अभी प्रभुपाद जी के साथ जा रहे थे, उनको मिसरिप्रेजेंट कर रहे थे कहते से, पर प्रभुपाद जी ने कुछ बताया ही नहीं उनको, क्योंकि वो नए भक्त थे। प्रभुपाद जी ने क्या किया, फिर कुछ एक बार बैक टू वर्ल्ड मैगजीन आ गया था, तो उस समय बैक टू वर्ल्ड मैगजीन में वो जो हरिदास ठाकुर और वेश्या की कहानी थी उसका चित्रण था। प्रभुपाद जी ने वो चित्र उसका वो कहानी थी उसका चित्र भी, प्रभुपाद जी ने वो चित्र दिखाया और बोले क्या है ये, हाँ ये अभी भक्त बन गई है, तो भक्त बन गए मतलब क्या हो गए, वो जप कर रही है, उसके हाथ में माला, हाँ और क्या है, बोले उसने अपने बाल शेव कर दिए। प्रभुपाद जी आप चाहते हो मेरे बाल शेव कर दो, हाँ दैट्स राइट।
तो
प्रभुपाद जी ने बड़े संवेदनशीलता से उनको समझाया, ए तुम क्या कर रहे हो, बाल निकाल दो। और तो क्या है, जो डांटते भी है ना वो उनको भी संवेदनशीलता से रहना चाहिए, कि जहां तक हो सके पब्लिकली नहीं बोले, संवेदनशीलता प्राइवेट में बोले। पर अगर हमें कोई डांट दे देता है तो हमें क्रोध भी आ जाता है, तो कम से कम उस क्रोध पे कार्य न करें। और हम देख सकते हैं कि ये इन वन सेंस our emotions tell us what is important for us, tell us what we feel is important for us. कि हमारी भावनाएं हैं बताती है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। अगर कोई बोलता है जिम्बाब्वे में बम फट गया, ठीक है कहीं भी बम फट गया बुरी चीज है, पर जिम्बाब्वे में हम तो कुछ लेना देना नहीं है। पर अगर बोलते जूही बीच में बम फट गया, जूही बीच जूही बीच यहाँ से दूर नहीं गया, हमको थोड़ा और क्या है कि वो हमारे महत्वपूर्ण है। तो कैसे है कि अगर कोई हमें डांटता है तो वो व्यक्ति डांट रहे हैं या हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम थोड़ा अन्वेषण कर सकते हैं, हमारे आत्म परीक्षण कर सकते हैं, देखते कि वो गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे, यहाँ पे कुछ तो चीज़ है जो महत्वपूर्ण है, क्या ये सेवा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये सेवा मैं अच्छे से करनी चाहिए थी, मैंने ऐसे केयरलेस कैसे हो गया, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, वो भाव है, या व्यक्ति ये व्यक्ति डांट रहा है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, तो शायद मेरा इनके साथ कुछ संबंध अच्छा नहीं है, क्यों संबंध अच्छा नहीं है, वो हम आत्मनिरीक्षण कर सकते करके खुद समझ सकते कि ऐसे वो भावनाओं पे कार्य करने के जगह पे हम देख सकते हैं कि भावनाएं क्यों आ रही है, और फिर उससे हम खुद के बारे में समझ सकते हैं, हमारे 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 जो महत्वपूर्ण समझ सकते हैं, हमारे संबंध जो है उसके बारे में समझ सकते हैं, और हर एक व्यक्ति के बारे में क्यों क्रोध आ रहा है वो अलग हो सकता है, बट ओवरऑल हम समझ सकते हैं इस तरह से। विद आंसर योर क्वेश्चन, करेक्ट ओके। तो आप खुद की भावनाओं का हम निरीक्षण कैसे कर सकते हैं, मुश्किल होता है, हाँ सत्य है ये, उसके लिए सत्वगुण जरूरी है। तो कई बार जब हम कुछ क्रोध आता है, कुछ भावनाएं के वश में चले आते हैं, तो तभी जैसे ही हमारी बुद्धि जागरूक हो जाती है तभी हम खुद को नियंत्रण करें, चिल्लाने लगते हैं, अरे नहीं करना चाहिए, तो चेक कर लो, जैसे ही समझ में आए चेक कर लो, पर उसके बाद में जब हम सत्वगुण में हैं तभी हम थोड़ा विचार करना चाहिए। तो हर रोज के दिनचर्या में या कम से कम हफ्ते में एक बार हम जो हमारे जीवन में हुआ है सबके बारे में पूरा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, बस जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई है उसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे हम, तो हम समझ सकते हैं। इमोशंस आर फेल्ट इन प्रॉक्सिमिटी बट इमोशंस आर बेस्ट अंडरस्टूड फ्रॉम अ डिस्टेंस। जो भावनाएं हैं जो हमारे ऊपर आते हैं हम अनुभव करते हैं, मुझे क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, पर थोड़ी जब दूरी आती है तो हम भावनाओं को समझ सकते हैं। तो भावनाओं को महसूस करना और भावनाओं को समझना वो चीज अलग अलग है। तो भावनाओं को समझने के लिए कई बार थोड़ी दूरी लगती है, तो इसलिए एक दो दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद उसके बारे में जब हम सत्व गुण में, तो हम विचार कर सकते हैं कि अरे ये कैसे हुआ, और तभी हम जब विचार करते हैं तो समझ में आ जाएगा। खास करके अगर कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो उसके बारे में थोड़ा जर्नल में लिख लेना, और उस तरह से जो विचार मन में घूम रहे हैं उनको बाहर लेके जाते हैं, तो उसके बारे में हम और उस तो वापस एक तरह से शारीरिक दृष्टि से दूरी आ जाती है, फिजिकली डिस्टेंस कम्स। तो व्हाट इज फिजिकल, शारीरिक नहीं है, फिजिकल मतलब शारीरिक इज बॉडीली, एक व्यवहारिक पद से थोड़ी दूरी आ जाती है, तो उससे भी हम विचार कर सकते हैं थोड़ा। ओके, किसी कोई और सवाल है? तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास कुछ गुण है दूसरों के पास नहीं है, तो क्या उससे अहंकार नहीं आ सकता है? हाँ, अहंकार आ सकता है। वास्तव में अहंकार ऐसे, जब हम कहते हैं मैं कुछ करूँगा या कुछ समझूंगा, तो अगर मैं अच्छा बोल पाता हूँ, अच्छा गा पाता हूँ, अच्छा कीर्तन कर पाता हूँ, अच्छा मिलूंगा, अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मुझे अहंकार आ जाएगा। वास्तव में ऐसा विचार ही अहंकार है। क्यों? क्योंकि ऐसे विचार में हम ऐसा सोच रहे हैं कि अभी अहंकार नहीं है मेरे पास। जब मैं सोचूंगा, जब मैं ऐसे बोलता हूँ कि अरे मैं अच्छा मृदंग बजाऊंगा, या मैं सोचूंगा कि मैं अच्छा मृदंग बजाता हूँ, उसके बाद मुझे अहंकार आ जाएगा। उसमें मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि मुझे अहंकार है नहीं अभी, पर बाद में आ जाएगा अहंकार। तो ऐसे नहीं, हम सब में अहंकार पहले से है। तो क्या है, हम सब में अहंकार है, पर कई हम सब के पास कई बार वो अहंकार प्रदर्शित करने के लिए मौका नहीं है, या अहंकार प्रदर्शित करने के लिए कारण नहीं है। मतलब मैं तो सोचता था मैं बहुत बड़ा हूं, पर क्या है, कैसे दिखाऊं कैसे लोगों को मैं बड़ा हूं, वो पता नहीं मुझे, इसीलिए मेरा गर्व बाहर नहीं आ रहा है। द क्योर फॉर प्राइड इज नॉट सप्रेशन ऑफ टैलेंट, द क्योर फॉर प्राइड इज प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटेंट। कि जो हमारे हमें जो गर्व है वह हमारे प्रतिभाव का दमन करने से गर्व जाएगा नहीं। अगर मुझे सही में मृदंग अच्छा बजाना आता है तो वो एक सत्य आता है मुझे अच्छा बजाना, नहीं मैं मृदंग अच्छा नहीं बजा सकता, ऐसा बोलने से वो गर्व जाने वाला नहीं है। मैं बोलूँ अरे मैं मृदंग अच्छा बजाता हूँ इसलिए मैं मृदंग अच्छा बजाऊंगा, तो मुझे गर्व आ जाएगा, तो इसलिए मैं मृदंग बजाऊंगा ही नहीं। पर क्या होगा, मृदंग तो कोई ना कोई तो बजाने वाला है, और जो दूसरा अच्छा बजाएगा और उसका गुणगान होगा तो मैं उसकी ईर्ष्या करूंगा। तो मैं बोलो मैं मृदंग बजाऊंगा नहीं, और मैं गर्व नहीं करूंगा, पर वो क्या है, वही जो भावना है वो आ जाएगी दूसरे की इच्छा के प्रति में। तो इसीलिए अगर हम में कुछ क्षमताएं है तो वो जांचना, वो समझना वो गलत नहीं है। ऐसे अभी मुझे सबको जाके बताने की जरूरत नहीं, अरे मैं मृदंग बहुत अच्छा बजाता हूँ, ऐसे सबको बताने की जरूरत नहीं है। पर अगर हम एक ऑब्जेक्टिवली अगर हम एक तथ्य के रूप में देख सकते हैं कि अरे हाँ मुझे मृदंग अच्छा लगता है, तो उसे हम पता चलता है अच्छा ये सेवा मैं कर सकता हूँ। तो द क्योर फॉर प्राइड इज नॉट सप्रेशन ऑफ टैलेंट बट प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटेंट। प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटेंट मतलब मैं ये मृदंग बजा रहा हूँ किसके लिए बजा रहा हूँ। अगर मैं सोचूंगा कि मृदंग बजाने की शक्ति मुझे भगवान ने दी है और ये भगवान का कीर्तन हो रहा है, तो मैं भगवान की पसंदा के लिए मृदंग बजा रहा हूँ। अगर ऐसे सोचूंगा मैं, तो फिर क्या होगा, तो मृदंग बजा पाऊंगा, उसमें गर्व नहीं होगा मुझे। तो हमें जो भी क्षमताएं दी है वो वास्तव में भगवान ने दी है, और भगवान की सेवा में इस्तेमाल करनी है। तो अगर मैं बोलूंगा मेरे पास ये क्षमता है ही नहीं, तो फिर वो हम जो भगवान ने दिया है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें जो क्षमता है वो सारी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है हमें। पर अगर हम कहीं जाते हैं, अगर कोई हमारे नई अथॉरिटी आ गई है, उनको वो अगर पूछते हैं हमको कि तो आप क्या सेवा करते हो, तो बता सकते मैं ये बजाता हूँ, ये बजाता हूँ, ये करता हूँ। पर हर बार मैं कोई भी नए भक्त से मिलता हूँ तो उसको बोलने की जरूरत नहीं कर रहे मुझे, मैं बड़ा मृदंग बजाता हूँ, बताओ ऐसे वैसे बताने की जरूरत नहीं है किसी को। पर अगर कुछ सेवा सेवा के लिए हमको जानकारी लेनी है तो हमको पता होना चाहिए, दूसरे को बताना कोई गलत बात नहीं है। उसीलिए हमें प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटेंट, ये मैं क्यों कर रहा हूँ वो देखना है, और अगर वो हम सेवा के भाव से करते हैं तो जरूर उससे हमारी प्रगति होगी। तो जब हम ये सोचते हैं कि ये मेरे पास है और ये उनके पास नहीं है, तो उसमें क्या है, हम सिर्फ मुझे और उनको देख रहे हैं। अरे मेरे पास ये है इसलिए मैं बड़ा हूँ, उनके पास वो नहीं है इसलिए वो छोटे हैं। और अगर हम देखते हैं कि मेरे पास जो है वो भगवान ने मुझे दिया है और उनकी सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भगवान दूसरे को दूसरी चीज़ दी होगी। तो ये जब हम देखते हैं कि ये मेरे जो प्रतिभाएं हैं वो मुझे मेरा वर्चस्व दुनिया पे दिखाने के लिए नहीं है, ये मुझे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने के लिए। जब हमारा केंद्र भगवान पे रहता है तो हमारी जो क्षमताएं हैं वो भी हम उसकी जांच उसकी अवेयरनेस उसकी उसके बारे में जागरूक हो सकते हैं, पर उससे हम गर्वित होना जरूरी नहीं। जवाब मिले? यस। कई बार किसी भक्त में कुछ क्षमता होती है तो फिर वो उसी क्षमता के अनुसार कार्य करने में इतने लग जाते हैं कि उससे उनके वो अपने जो इंटेंट है, जो कार्य करने का हेतु है, उसका शुद्ध करके और ध्यान नहीं देते, और उसको कुछ हम उपदेश भी देते हैं उसका भी ध्यान नहीं देते। तो क्या कुछ कुछ परिस्थिति में उनको बोला कि आप ये सेवा मत करो, उनको उनकी क्षमताओं को दबाना क्या उचित है उनके भक्ति के संरक्षण के लिए? हाँ, कुछ कुछ परिस्थितियों में वो जरूरी हो सकता है, पर और कुछ समय के लिए वो कर सकते हैं। पर जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम का भाव क्या है कि जो व्यक्ति की प्रवृत्ति है उसके अनुसार से ब्राह्मणों को ब्राह्मणों की सेवा देना, क्षत्रियों को क्षत्रियों की सेवा देना, वैश्यों की वैश्यों 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 को मतलब जो इनको वैश्य प्रवृत्ति है उनको वैश्यों की सेवा देना। तो इसीलिए अगर हमें किसी भक्त को आजीवन सेवा में प्रवृत्त करना है तो उनके जो स्वाभाविक क्षमताएं है उनके अनुसार अगर हम सेवा देते हैं तो वो प्रगति कर सकते हैं। पर यत्तु कृत्स्नवद एकस्मिन् कार्ये सत्तम अहितुकम् अतत्वार्थवद् अल्पं च तत् तामसमुदहर्तम्। भगवद् गीता के 18वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि तमोगुण का जो ज्ञान है, तमोगुण की जो दृष्टि है वो क्या है कि एक चीज को ही सब कुछ मान लेना। यत्तु कृत्स्नवद् एकस्मिन्, मतलब अगर मैं अच्छा कीर्तन कर सकता हूं तो अच्छा कीर्तन करना ही सब कुछ मान लेता मैं। तो अरे प्रवचन क्या है, ये तो युग धर्म तो हरिनाम है, मैनेजमेंट वो तो माया है। मैं कीर्तन करता हूं इसलिए मैं महान भक्त हूं और बाकी कोई है ही नहीं कुछ। तो ऐसा अगर भाव होता है तो वो मेरे लिए ये चीज महत्वपूर्ण है, मैं अच्छी से कर सकता हूँ इसलिए मैं ये करूंगा, पर दूसरी सेवाएं भी महत्वपूर्ण है, दूसरी सेवाएं को भी आदत देना चाहिए, भले ही मैं वो सेवा नहीं कर रहा हूँ, तो वह हमें जो वो विकास होना चाहिए। तो अगर एक चीज को हम सब कुछ मान रहे हैं तो वास्तव में तमोगुण का लक्षण है। तो इसीलिए हम जब प्रशिक्षण देते हैं, खास करके जब नए भक्त आते हैं तो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग वगैरह जब होती है शुरुआत में या बेस ट्रेनिंग में होती, तो उसमें जो अलग अलग क्षेत्रों में और सब अलग अलग विभागों में उसको थोड़ा ट्रेनिंग मिल जाता है, पर उस समय भी अगर किसी को में कुछ विशेष क्षमता है तो वो विशेष क्षमता को कम से कम उसकी जानकारी तो होनी चाहिए, उस भक्त को जानकारी चाहिए, उसके भक्त मार्गदर्शक को जानकारी होनी चाहिए, और उचित समय जब आ जाएगा तब उनको उसमें प्रेरित करना है। और इसमें भी एक और चीज़ है कि अगर हम चाहते हैं कि हम हमारी संस्कृति बनाए रखें, तो किसी भी चीज़ में अगर निपुण होना है तो एक तरह से उसमें इन्फैचुएट होना जरूरी है उसमें। अगर हम चाहते हैं कि किसी को बहुत अच्छा संगीत करना है, किसी को बहुत अच्छा लेखक बनना है, किसी को बहुत अच्छा पुजारी बनना है, किसी को बहुत अच्छी कोई सेवा करनी है, तो उसमें कभी कभी जाना पड़ता है। अगर कोई जन्माष्टमी कोई बहुत अच्छा ड्रेस बना रहे जन्माष्टमी के लिए, तो उस समय वो कभी कभी एक भगवान का ड्रेस बनाने के लिए हफ्ते हफ्ते महीने महीने लगते हैं, और वो बहुत सुंदर अगर ड्रेस बना रहा है तो बाकी सारी चीज़ों को दूर रखना पड़ता है। ये मैं इसी के बारे में विचार करूँगा। तो कभी कभी अगर कोई व्यक्ति एक विशेष सेवा में जा रहा है तो उसमें उसके बहुत सखोल चला जाना वो गलत नहीं है, पर वो उसमें परिपक्वता होनी चाहिए कि कब मैं इतना अंदर जाके भी भक्ति में रह सकता हूँ, और कभी कब मैं इतना इसके अंदर चला जाता हूँ कि भक्ति चली जाती है और सिर्फ वो ही रहता है। तो मैं भगवान के ड्रेस में इतना मैं लीन हो जा रहा हूँ कि जब दर्शन खुलता है तो मैं ड्रेस ही देखता हूँ, भगवान दिखता ही नहीं है। तो फिर वो उचित नहीं है। तो इसीलिए यह बैलेंस रहना चाहिए सब। तो असाधारणतया अगर व्यक्ति भक्ति में प्रगति करके वो सत्वगुण में आ जाता है, सत्वगुण में क्या होता है, हम पूरा सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशं जायते ज्ञानम् यदा तदा विद्या निरुद्ध सत्वम् इति उक्तम्। तो किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन अच्छी बात है, पर वो एक चीज ही सब कुछ नहीं माननी चाहिए। और वो कभी कभी कुछ समय के लिए वो एक चीज में जाना थोड़ी देर से बुरा नहीं है, जरूरी हो सकता है वो, और उसके बाद में पुनः मार्ग पे आ जाना भी जरूरी है। तो इसलिए वो परिपक्वता होनी चाहिए। तो भक्ति में कुछ हद तक प्रगति करने के बाद कोई व्यक्ति किसी एक विषय में जाता है तो फिर वो व्यक्ति परिपक्वता के साथ जो संतुलन रख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद्गीता की
जय।
श्री प्रभुपाद की
जय।
गौर भक्तवृंद की
जय।
कई और सवाल भी थे तो कल भी हुए, कल भागवत में के भी सवाल पूछ सकते हैं, या समाप्त कल हमारा कैंप भी है, अभी आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।